इनका एक तो इनका ये शुबा था, एक तो ये डाउट करते थे इस बात पे कि जिनी आ कैसे उठेंगे, कोई ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं। आखिर ला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ सामने कहा जाता है अबू जहल ने एक दफा बोसीदा हड्डियां लाके, और इतनी बोसीदा थी कि वो भुरभुरी हो चुकी थी, वो ला के हड्डी ऐसे ऐसे चूरा चूरा की जैसे आप किसी चीज को मसलते हैं तो ऐसे आंख बन जाती है मट्टी। देखिए देखो ये तुम कहते हो कि ये उठेंगे, इस चीज को मजाक उड़ाते थे। दूसरा उनका डाउट क्या था कि आप तो सच्चे नबी नहीं है, अगर आप सच्चे नबी होते तो फिर हम तो उस वक्त से नहीं मान रहे, आप कहते हैं कि अजाब आएगा अजाब आएगा, तो फिर अजाब क्यों नहीं आ जाता हमारे ऊपर। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया ये वयस्ताजिनूना कबिस सय्यिअती क़ब्लल हसना, ये जल्दी मांगते हैं आपसे बुराई को भलाई से, भलाई से पहले बुराई को मांगते हैं, यानी अजाब मांग रहे हैं बजाय आफियत मांगने के, बजाय इसके कि डर जाए अल्लाह से सलामती मांगे। कहते क्यों नहीं आता अजाब, तुम रोज हमें धमकियां देते हो अल्लाह पकड़ेगा अजाब आ जाएगा, क्यों नहीं आता फिर अजाब। जैसे ढीठ हो गए थे ना, जैसे बेखौफ हो गए थे, कितनी ना समझी की बातें। जैसे हम आज बेखौफ हो गए, हम सोचते हैं कभी भी नहीं कुछ होना, लेकिन ऐसे ही चलते रहना, ये जो हमने ऐसे ही सजाएं पढ़ लेते हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं आज तक कभी कुछ हुआ, यानी हम सोचते हैं कि अगर हम आज तक सेफ हैं तो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये इतने हद से गुजर गए, इतनी जुर्रत की कि अजाब मांगना ही शुरू कर दिया। बल्कि कुछ लोगों ने क्या किया, काफरों ने, वो कहने लगे खुदाया अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ पेश कर रहे हैं अगर ये हक है तो हम पे आसमान से पत्थर बरसा दे। इतने ढीठ हो गए थे, क्यों वो ऐसे मांगते थे, क्या उनको अजाब का शौक था? नहीं, अजाब का शौक नहीं था इसलिए कि उनको यकीन ही नहीं था कि कभी ऐसे हो सकता। उनको ना नबुवत के पर यकीन था, ना अल्लाह के अजाबों के आने का यकीन था। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन में ना कभी किसी को लेकर जाके कोई अजाब मांगने लगे, अजाब कभी भी नहीं मांगना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हमेशा आफियत मांगो। कभी ये ना कहें हाँ मुसलमानों को अच्छा जूते पड़े ना तो फिर ही इनको पता चलेगा, अच्छा इनके ऊपर ऐसे हुक्मरान आए जो इनको इनको मारे फिर ये सीधे होंगे, फिर मजा आएगा, फिर सुधरेंगे। इस तरह की दुआएं नहीं मांगनी चाहिए, हमेशा भलाई की दुआ मांगे, अपने लिए खुद अजाब ना चाहे, अपने लिए खुद अजाब ना मांगे। नहीं अगर वो ऐसा होगा तो फिर ही तो देखें ईसा अलैहि सलाम आएंगे ना, फिर ही ऐसे होंगे। कई लोग इतनी ना समझी की बात करते हैं, अपने लिए खुद अजाब मांग रहे हैं। जब ईसा अलैहि सलाम ने आना होगा तब तो आना ही होगा, तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम ये चाहो और ये मांगो कि ऐसा होगा ना तो फिर अच्छा होगा, इतना होना चाहिए। इस तरह मुसलमानों के जगाने के लिए ये जरूरी है, मुसलमान का जागना तो जरूरी है, लेकिन ये दुआ करो कि अल्लाह मुसलमान को जगाना तो नरमी के साथ, या अल्लाह हम पे ऐसे ही चीजें ना मुसल्लत करना, क्योंकि फिर कामिल लोगों का ईमान बाकी रह जाता। यहाँ पे कोई अबू बकर सिद्दीक और उमर तो बैठे नहीं हुए कि कोई अजाब आ गया तो फिर हम फिर भी इतने अच्छे हैं कि हम फिर भी ईमान के ऊपर रहते हुए ईमान पे स्ट्रांग रहेंगे, बहुत सारे फ्लिप कर जाएंगे। अभी तो मिले जुले रह रहे हैं ना, अभी तो अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ हमारे ईमानों का। तो मत मांगो जल्दी, मत मांगो बुराई को, मत मांगो अजाब को। कैसे, यानी एक उनको कंडेम किया गया कि वो ये देखो कितनी बेवकूफी है कि अजाब मांग रहे हैं बजाय कि हसना मांगने के। तो हम उस तरह की बेवकूफी ना करें, हमेशा खैर मांगे अल्लाह से, हमेशा अगर आपने हिदायत भी मांगनी है तो अल्लाह हिदायत भी नरमी के साथ देना, यानी कि जूते पढ़ के हिदायत मिले, ऐसे तो नहीं हमने सी को ना हमें इस तरह ही बस हिदायत दे। क्या मांग रहे फिर अपने लिए, सही मांग रहे हो फिर तो। वक़द खलत मिन क़ब्लिहिम, और हालांकि गुजर चुकी इनसे पहले क्या, अल मसूलात, इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी। ये अभी भी ये सोचते हैं आ जाए ना हमारे ऊपर अजाब, आ जाए ना देखो कब आएगा, हालांकि तुम देख नहीं रहे पिछली कौमों पे कैसे अजाब गुजरे। अल्लाह को अजाब भेजना मुश्किल नहीं है, तुम ये सोचते नहीं हो। इतनी इबरतनाक सजाएं इनकी कि यानी आप देखते हैं तो वीरानी की तस्वीर है वो जगह जहां पे कभी अजाब आए। इसी जमीन के ऊपर ही है ना, जाओ जाके देखो पिरामिड्स इनको, जाओ पॉम्पे को देखो, जाओ देखो कैसे डेड सी पड़ा हुआ, जाओ देखो खंडरात इनके मोहनजोदाड़ो हड़प्पा वगैरह के, देखो समूद की बस्ती, अल्लाह के अजाब नहीं आए वहां पे? तुम डाउट करते हो। वह इन्ना रब्बा का लदू मगफिरत लिन्नासी अला जुल्मी, हालांकि तुम्हारा रब तो अभी बड़ा बख्शने वाला लोगों को उनके जुल्म के बावजूद, हालांकि अल्लाह तो अभी जल्दी पकड़ता ही नहीं है। ये बात समझ आ रही है कि यदि तुम कहते हो कि जल्दी मांगते, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए अजाब, कई लोग क्यामत का बड़ा शौक रखते हैं, कहते हैं जल्दी आ जाए क्यामत, बस आ जाए और बस सारा कुछ खत्म हो। नहीं, उनको क्यामत का ऐसा जैसे कि कोई सस्पेंस, और जैसे बड़े कोई चीज, हम बड़े जैसे कोई एडवेंचरस से हैं तो कोई क्यामत आएगी, मजा आए देखेंगे, ये क्यों कभी नहीं मांगे। और फरमाया तुम देखते नहीं हो, तुम्हारे से पहले इतनी इबरतनाक मिसालें पड़ी हैं, उनको देख लो, अगर तुम्हें यही है कि कैसे आएगा। हालांकि अभी तो अल्लाह ताला बहुत माफ करता है लोगों को, बहुत माफ करता है। अगर अल्लाह पकड़ने लगे लोगों को उनके गुनाहों के ऊपर, तो कोई इस जमीन के ऊपर जीरू चलता फिरता नजर ना आए, कोई जानदार बाकी ना बचे। तो इसके बावजूद के लोग जुल्म कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला फिर भी उनको माफ कर रहा होता है। कैसे? कभी उनको मोहलत देता है, कभी उनको वैसे ही माफ कर देता है, बार बार चांसेस देता रहता है, नहीं अजाब फौरन भेजता। बंदे अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, जुल्म किसके ऊपर हो रहा होता है? किसी और पे जुल्म नहीं, अपनी जानों पे जुल्म कर रहे होते हैं गुनाह कर करके। अल्लाह ताला उनको फिर तौबा के चांसेस देता है, फिर उनको इस तरह की कोई ऐसी ठोकर लग जाती है, कोई ऐसा उनको उनके साथ हादसा पेश आ जाता है कि अल्लाह ताला कहता है ये वापस पलटा, ये वापस पलटा, अल्लाह माफ करता रहता है, यानी उनको चांस देता है, इग्नोर करता रहता है, मगफरत की तरफ बुलाता रहता है। खुद हालांकि सजा मांग रहे हैं, फिर भी वो उसका तहम्मुल है कि वो नहीं, इनसे चश्मपोशी करता है। इन्ना रब्बका ला शदीदुल इक़ाब, याद रखो जो उसकी सजा है ना वो बहुत सख्त है, मत मांगो उसकी सजा है। जब वो लोगों को पकड़ने पे आए तो फिर कोई बचत नहीं होती। अक्सर लोग जब इंसान गुनाह करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जब नहीं पकड़ आती तो वो दलेर हो जाते हैं, पता नहीं अब तो कुछ होना ही नहीं, अब तो पता नहीं हमारी कोई पकड़ ही नहीं होनी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह की जो पकड़ आ जाए ना तो बहुत सख्त है। इसीलिए फरमाया ना, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला, और यकीनन मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है। अने अल्लाह मगफरत करने वाला तो है, माफ तो करता है और माफ करता चला जाता है, मोहलतें देता चला जाता है, ये भी उसकी रहमत है। लेकिन जिस वक्त वो पकड़ने पे आता है ना तो तुम बेखौफ ना हो जाना उसका ये ढब देख के जो है ना, नहीं नहीं उसने पकड़ना ही नहीं, दूसरी तरफ उसकी सजा भी बहुत सख्त है। तो इंसान को जब जिंदगी में चले तो सिर्फ अल्लाह की रहमत को सामने रख के नहीं चले, उसकी अजाब को भी याद रख के चले। यही बैलेंस है, बैलेंस कि वो शदीदुल इक़ाब भी है, यही नहीं कि बस वो गफूर रहीम है, वो तो हम जितना मर्जी करते रहे वो तो माफ करता ही जाता है। साथ ही उसने फरमा दिया हाँ वो माफ करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, लेकिन ये मत भूलना तो सजा देने में भी सख्त है। वो याद करें नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अजाब आया था तो मैंने आपको बताया था ना, वो औरत अपने बच्चे को लेकर पहाड़ पे चढ़ गई, आपने फरमाया अगर अल्लाह ने किसी के ऊपर रहम करना होता तो उस दिन उस औरत पे रहम फरमा देता। जब उसकी सजा आती है ना तो वो इंसान किस सहने के काबिल नहीं होती, जब वो पकड़ता है तो फिर कोई बच नहीं सकता। तो तुम इतने होशियार हो के ये ना करो कि हम सजाएं मांगे, उसकी नाराजगी मांगे, उसका अजाब मांगे कि आ जाए अजाब, और कभी ये सोच के नाफरमानी ना करते जाओ कि वो तो माफ करता ही जाता है, आज तक भी माफ किया तो माफ ही करना उसने। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अब ये उनका तीसरा शुबा था, तीसरा डाउट था, वो कहते थे जी मुझ जात लेकर आए, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बहुत से मौजज़े हैं, ऐसा नहीं है कि आपके कोई मौजज़ा नहीं है। ये कुरान करीम तो मौजज़ा है, इसके अलावा भी बहुत सारे मौजज़ात थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर हम किसी दिन इसके ऊपर लेक्चर करें तो लेक्चर इसी के ऊपर हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े क्या क्या थे। तो शक़े कमर का मौजज़ा तो सभी पता ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। इसके अलावा एक बस मैं सिंपल एक थोड़ा टच कर देती हूँ इस बात को कि एक सफर में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अराबी ने कहा कि मुझे आप कोई चीज दिखाएं तो मैं फिर आपको मानूं कि आप एक रसूल है। तो आपने फरमाया कि अच्छा क्या चीज तुमने, उसने कहा कि कोई ऐसी गवाही होनी चाहिए। फिर आपने दिखाया उसको कि एक दरख्त था, आपने उसको बुलाया, वो दरख्त वादी के किनारे पे आया जमीन को चीरता हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया, उसने तीन दफा कलमा शहादत पढ़ा, उसके बाद वो वापस चला गया अपनी जगह पे और वो जो बद्दू था वो ईमान ले आया। ये बाजार में ये हदीस है, अबू आला में भी है। फिर इसी तरह एक खजूर का होशा था, उसके बारे में भी आता है कि वो भी इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके गिर गया, फिर आपने उसको लौट जाने को कहा, वो लौट गया। ये तिर्मिजी में आती है, दारमी में भी ये हदीस है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा खाना था और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि वो इतने सारे लोगों को पूरा आ गया, सब ने खाया, जंगे खंदक का ये वाकया। फिर इसी तरह बुखारी में ये वाकया है कि हुदैबिया के दिन जब लोगों को पानी की बहुत कमी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसमें अपने हाथ अपनी उंगलियां डाली पानी के बर्तन में और कैसे वो पानी कैसे जोश से और तेजी से पानी निकलने लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से, जिस तरह चश्मों से उबलता है। तो इस तरह के तो बहुत सारे मौजज़े हैं। फिर आपने वो खजूर के तने का सुनाया कि किस तरह से वो खजूर का तना रोने लगा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े हैं ना। तो बहुत सारे मौजज़े हैं, मौजज़ों को तो देखें तो, लेकिन ये कहते थे जो हम कह रहे हैं ना बस वो मौजज़ा आना चाहिए कि सफा पहाड़ सोने का हो जाए, यहाँ पे इस तरह से नदियां बहने लगे, नहरें बहने लगे, ये हो जाए। तो जो हम मांग रहे हैं वो दिखाएं, और चूंकि आप वो नहीं दिखाते इसलिए आप नहीं नबी हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इनको कहें, वो कहते हैं वो यकूल लदीना काफर लौला उनजिला अलैहि आयतुम मिन रब्बी, वो कहते हैं आपको आके जिन्होंने कुफर किया क्यों नहीं उतारी गई इस पे कोई निशानी इसके रब की तरफ से। निशानी से मुराद यहाँ पे क्या है, कोई मौजज़ा। जब मौजज़ा आता सोफा पहाड़ सोने का बनता तो हम मानते ना, अब हम इन्होंने दिखाया नहीं तो अब ये नहीं कोई, हम इनकी नबूवत नहीं मानते। तो अल्लाह ताला फरमाते इन्नमा अंता मुंजिर, ए नबी आप डराने वाले हैं, आप कोई वो नहीं है तमाशबीन, कोई जादूगर, कोई वो के भाई इनको शोभदे दिखाते रहे। वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए हादी होता है, हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने गाइड करने के लिए कोई ना कोई हादी भेजा है। इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ये कोई पहली दफा तो नहीं इनके पास कोई नबी आया, तो पहली दफा कोई एक अचंभा बात हो गई, पहले भी कौमों के पास नबी आते रहे हैं। तो ये आपसे मौजज़े मांग रहे हैं, आपको मौजज़े दिखाने के लिए तो नहीं आए। आपका काम क्या है, लोगों को अल्लाह के अजाबों से डराना, आखरत की से डराना, और हर जो पिछली कौम आई है उसमें हादी आते गए हैं। हिदायत के लिए अल्लाह ताला इंतजाम फरमाता रहा है, इसका मतलब कि हर कौम और हर मुल्क में नबी आया था। तो बात यह है कि कोई कौम और कोई खिता जहां पे भी जो मेन उसकी बस्ती होती थी वहां पे कोई ना कोई नबी आता था, या उसके उसकी जगह कोई ऐसा बंदा आता था जो दावत देता था अल्लाह की तरफ। जैसे कि हम सूरह यासीन में पढ़ते हैं कि वहां पे पहले दो शख्सों की दावत और हिदायत के लिए जो इन्होंने पुकारा था उनकी बात आई है, वो खुद नबी नहीं थे लेकिन वो दो लोग थे, फिर तीसरे आदमी को उनकी ताईद के लिए भेजने का जिक्र आया। तो कोई ना कोई अल्लाह ताला अरेंजमेंट जरूर करता रहा, कोई ना कोई जरूर हर एक जगह पे किसी ना किसी फॉर्म और शेप में कोई हिदायत का इंतजाम अल्लाह ताला ने जरूर फरमाया। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, अल्लाह ही जानता है। देखो अल्लाह ताला ने अब आप अगेन अपनी कुदरतों की बात बताई है कि अल्लाह ही जानता है कि किसी मादा ने क्या उठाया है। सिर्फ इंसान की बात नहीं यहाँ पे की जा रही, किसी भी मादा जो हर मादा है, कुल्लु उन्सा हर मादा ने क्या उठाया। अब मादाएं सोचिए आप, फीमेल्स इस जमीन पे ही सिर्फ आप देख लें कि कितनी फीमेल्स हैं, हर एक स्पीशी को सोचें, तो आप देख लें, परिंदे देख लें, कोई परिंदा, एक चिड़िया देख लें, एक उकाब देख लें, एक शेर देख लें, कितनी स्पीशीज हैं, उन सब की फीमेल्स, इंसान देख लें, जिन्नात देख लें, इन सब की फीमेल्स जो हैं, उन्होंने क्या उठाया हुआ है। आप ये सोचेंगे हमें भी पता है कि क्या उठाया हुआ है, हम भी अब अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं, तो आप तो अल्ट्रासाउंड से सिर्फ एक औरत का देखते हैं कि इसने ये क्या, ये बच्चा लड़का है कि लड़की है और किस ठीक ठाक है उसकी, उसमें इतने सिर को हम सिर्फ समझ लेते हैं कि ये हमें भी इल्म हो गया। अल्लाह ताला का इल्म कैसा है कि अल्लाह जानता है मादा ने मेल उठाया या फीमेल, और हर मादा को ये पूरा होगा, कंप्लीट होगा भी या नहीं, ये फीटस, ये कौन सा अल्ट्रासाउंड बता सकता है। फिर वो जो उठाए हुए है खूबसूरत है बदसूरत है, किस शक्ल का है, नेक होगा या बद होगा, ये कौन सी आपकी अल्ट्रासाउंड या मशीनें बता सकती है। ये लंबी उम्र पाएगा या पैदा होते ही मर जाएगा, ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सखी होगा या बखील होगा, ये आलिम होगा या जाहिल होगा, ये पूरे आजाद के साथ सलामती वाला होगा या नहीं होगा, ये इसमें अकल होगी या जहनी तौर पर माजूर होगा, ये इसको रिस्क की फरामानी मिलेगी या ये फकीर होगा। कोई मादा भी नहीं जानती जो उसने उठाया था, उसके पेट में है लेकिन वो नहीं जानती। और सुभान अल्लाह, बाज दफा तो मादा को ये भी नहीं पता चलता कि उसने कुछ उठाया हुआ, कई महीने गुजर जाते हैं फिर उसको पता चलता है कि वो, मैं तो प्रेग्नेंट थी। अल्लाह लेकिन जानता है, वो जानता है जो हर मादा उठाए हुए, ये नाफरमान है या ये फरमा बरदार है जो पैदा होने वाला है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मुतकब्बिर होगा या ये आजिज होगा, ये अल्लाह के आगे झुकने वाला होगा या अल्लाह के आगे अकड़ने वाला होगा। ये कल को माँ बाप को सताने वाला होगा या उनके लिए खुशी का सामान बनने वाला होगा। ये माँ उठाए हुए है ना, ये खुश हो रही है, उसको नहीं पता कल को ये उसके लिए सदमा बनना है या क्या। जब भी कभी अल्लाह ताला माफ करे, ऐसी खबरों से, ऐसी ऐसी भी खबरें आ ही जाती हैं कभी, तो बहुत दिल को तकलीफ होती है कि किसी बच्चे ने अपने ही बाप को या किसी बेटे ने अपनी ही माँ को मार दिया, कत्ल कर दिया। ऐसी राती तो यही बात सोचती हूँ कि देखो अल्लाह ही जानता है जब माँ ने उठाया होगा कि यही इस माँ का कातिल है, यही इस औरत का कातिल है। जब ये पैदा हुआ होगा किसी बाप ने खुशी मनाई होगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यही मेरी जान को लेने वाला होगा, यही मेरे दुख का सामान बनेगा। ये छोटी बात है कोई? अल्लाह जानता है जब वो उठाती है और जिस वक्त वो उठाती है, उसी वक्त फैसला हो गया, पहले सेल पे ही पता है अल्लाह को, उससे पहले ही पता है ये बच्चा जो बन रहा है ये किस किस्म का होगा, इसमें क्या खसूसियात होंगी, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। अल्लाह को ये भी पता है ये जन्नती होगा या ये जहन्नमी होगा। माँ नहीं जानती, मगर माँ का और बच्चे का रब जरूर जानता है कि ये कैसा है। और ये इंसान की इख्तियार में ही नहीं कि वो जान सके, उसका रब इतनी उस पर गिरफ्त रखता है, उसका रब का इख्तियार कितना ज्यादा है आप सोचें। वालदैन की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते। अल्लाह ताला जिस तरह से चाहता है उस तरह से वो बच्चा होता है। इंसान खुद नहीं जानता उसके अपने पेट के अंदर क्या चीज परवरिश पा रही है। तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया ना असल में कि तुम्हें तो खुद अपना भी नहीं पता जो तुम्हारे अपने अंदर पैदा हुआ हुआ, तुम तो उसको भी नहीं जानते, इतने ज्यादा तुम ला इल्म, और तुम्हारे रब के इल्म में क्या कुछ है। जिस रहम को एक औरत कहती है ना, ये मेरा वूम्ब है, ये मेरा रहम है, ये मेरा बच्चा है, वो औरत भी नहीं जानती कि मैंने क्या उठाया हुआ। और कितने अरसे तक ये भी कब्बास दफा होता है कि औरत को पता ही नहीं होता वो बच्चा पेट में मर जाता है, اسی لیے فرمایا وما توغید الارحام وما تزداد، جو کمی کرتے ہیں رحم اور جو بڑھاتے ہیں. تو کمی کیا ہے کہ مثلاً بچہ اگر اندر مر گیا تو یہ کمی ہو گئی، اور پھر ایک بچہ ہے جو ایک ہے پیٹ میں اور کبھی ہیں دو ہیں یا ٹرپلٹس ہیں، ٹوئنز ہیں یا ٹرپلٹس ہیں، وہ مانی جانتی جو وما تزداد جو بڑھاتے ہیں. اسی طرح مدت رحم بھی، مدت ولادت بھی اس میں ہے کہ مدت ولادت پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ولادت ہونی ہے، کمی ہوگی کبھی پہلے ہی پیدا ہو جاتا ہے ساتویں مہینے، کبھی ٹائم جتنا ڈاکٹر نے دیا ہوا اس سے بھی اوپر ہو جاتا ہے، کوئی مادہ نہیں جانتی. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جانتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، رب کے علم میں ہے یہ. اللہ اکبر. یعنی ماں کا ووم جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کارخانے کی طرح کام کرتا ہے، پروڈیوس کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، اس میں گروتھ ہو رہی ہے، بچہ بڑھ رہا ہے، اس کو غذا مل رہی ہے، اس کے اعضاء بن رہے ہیں، اور ماں ہی نہیں جان رہی کہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیسے اس کو سپلائی کرنا ہے کھانا، کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے، کیا ٹیمپریچر اندر رکھنا ہے، کتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے، کیسے بچے کو الٹنا پلٹنا ہے، کچھ نہیں پتا. انسان ماں باپ بھی تب دیکھتے ہیں جب وہ باہر آتا ہے، مگر ماں کے پیٹ میں وہ رب دیکھتا ہے بچے کو اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو کھلاتا ہے اور اس کو پلاتا ہے. یہ کتنی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب کو دیکھو، پہچانو ان نشانیوں سے کہ وہ رب کیسے تمہاری وہاں پہ نگہداشت کرتا ہے، کیسے اس نے تمہیں وہاں پہ رکھا ہوا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے ساتھ ہے، یعنی ایسے ہی نہیں ہو رہی، یہ بھی ساری یہ جو پلاننگ ہے. آپ اگر اپنے انسان کی نا عقل دنگ رہ جاتی ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ صرف ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی، ایک مادہ، ایک ماں کی بات نہیں ہو رہی، کتنی ہی عورتیں جو اس وقت حمل سے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک اور بات آتی ہے، حضرت مکحول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں بالکل بے غم، بے کھٹکے، آرام کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی ماں کے حیض کا خون اس کی غذا ہوتا ہے، جو بغیر مانگے آرام سے اس کو پہنچتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کو ان دنوں حیض نہیں آتا. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے زمین پر آتے ہی روتا چلا جاتا ہے، اس انجان جگہ سے اس کو وحشت ہوتی ہے. جب اس کی نال کٹ جاتی ہے، یعنی جو اس کی کارڈ کٹ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی ماں کے سینے میں پہنچا دیتا ہے، اور اب بھی بغیر طلب کیے، بغیر تلاش کیے، بغیر کسی رنج اور غم، بے فکری کے ساتھ اس کو روزی ملتی رہتی ہے. پھر ذرا بڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کھانے پینے لگتا ہے، لیکن بالغ ہوتے ہی روزی کے لیے ہائے ہائے کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. موت اور قتل تک سے روزی حاصل کرنے کا امکان ہو تب بھی پیچھے نہیں ہٹتا، کسی کو قتل کر کے بھی اس کو روزی ملنی ہو تو تب بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے. افسوس ہے ابن آدم، تجھ پہ حیرت ہے، جس نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں روزی دی، جس نے تجھے تیری ماں کی گود میں روزی دی، جس نے تجھے باپ بچے سے بالغ ہونے تک روزی دی، اب تو بالغ اور عقل مند ہو کے یہ کہنے لگا ہائے کہاں سے کھاؤں گا، ہائے کہاں سے کھاؤں گا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، سبحان اللہ. تو اس کے اندازے ہیں، اس کی تقدیر ہے، اس کی پلاننگ ہے، اس کی یہ بھی پلاننگ ہے کس کو کس وقت دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس تک پہنچنا ہے، اس کی پلاننگ ہے. انسان کا ناک نقشہ کیا ہوگا، وہ کس سیل سے بنے گا، کیسا رنگ ہوگا، کتنی دیر لگے گی اس کو، اندھا دھندی سب کچھ ہوتا جا رہا، یہ ہر چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے. کسی کو بیٹی دی تو اس کی پلاننگ ہے، کسی کو بیٹا دیا اس کی پلاننگ، کسی کو کچھ نہیں دیا یہ اس کی پلاننگ ہے. رزق کہاں سے آئے گا، اسی زمین پہ انسان رہ رہے ہیں، لاکھوں سالوں سے اسی زمین سے کھا رہے ہیں، رزق ختم نہیں ہو رہا. کتنوں نے یہاں پہ رہنا ہے، کتنوں نے نہیں رہنا، چلے جانا ہے، رب جانتا ہے. ہر چیز کی پلاننگ کر کے اس نے رکھی ہوئی ہے. इंसान चाहता है कि मेरी प्लानिंग से सब कुछ हो, है ना। हम भी तो प्लान करते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारी प्लानिंग चलनी चाहिए, लेकिन होता वो है जो रब की प्लानिंग है। और ईमान वाला वही है जो उसकी प्लानिंग के आगे सरे तस्लीम खम करते, झुका दे अपने आप को। आलिमुल गैब वश्शहादा, जानने वाला है गैब का और हाजिर का। गैब क्या चीज होती है? जो इंसान की ये सेंसेस से छुपी हुई हो, ना देख सके, ना सुन सके उसको, ना सूंघ सके, ना टच कर सके, उसको हम गैब कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फरिश्ते हमारे लिए गैब है, जन्नत जहन्नुम हमारे लिए गैब है, आसमानों के ऊपर क्या है हमारे लिए गैब है, इवन दूसरे कमरे में क्या हो रहा है वो भी हमारे लिए गैब है। इस वक्त हमारे बच्चे किस हाल में बैठे हैं हमें नहीं पता, ये हमारे लिए गैब है। जो चीज हमारी आंखों से ओझल है वो हमारे लिए तो गैब ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जानने वाला है गैब का और हाजिर का। गैब उसके लिए गैब नहीं है, तुम्हारे लिए। अल कबीर अल मुताल, बड़ा है और बहुत बुलंद है। अल कबीर, अब आप देखें वो अल कबीर है और खुद को देखें पिछली आयत में तो आप कहां हैं? माँ के पेट में छोटा सा, उसके रहम में एक छोटी सी चीज, कंट्रास्ट कैसा है। और वो कबीर कैसा है जो इल्म रखता है हर चीज का। कबीर किसने? अपनी सिफात में, अपने कमालात में, अपनी अजमतों में। तो वो बड़ा होके ही रहने वाला है। अब इसमें भी गौर करने की बात है कि उसकी बड़ाई कितनी है। इंसान को तो अपनी भी जरूरियात और अपनी भी सलाहियतों और अपनी भी चीजों का नहीं पता होता, और वो गैब और हाजिर हर चीज का, कायनात की हर चीज का, जितनी उसकी मखलूकात है हर एक का जानने वाला, खुले और छुपे का। अरे तो अकल भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। सवाउम मिनकुम मन असर्र अल कौल व मन जहरा बिही, बराबर है तुम में से जो छुपाए बात को और जो कोई जाहिर करे। सुभान अल्लाह, इंसान का हाल ये है कि कोई आहिस्ता आवाज में बोले तो सुनता ही नहीं, कहते जरा दोबारा बताना क्या बताया। हालांकि उसने बोल बोले हैं, आवाज थी लेकिन सुनाई नहीं थी। और इससे भी छोटी आवाज वो है जो दिल के अंदर ही ख्यालात उठते हैं, कोई नहीं जानता कि वो क्या ख्यालात हैं। हम बस कयास ही करते रहते हैं, अंदाजे लगाते रहते हैं, इसके दिल में ये बात होगी जरूर, मैं कह देती हूँ ये होगी। हालांकि ये हमारे अंदाजे होते हैं, कोई भी 100% नहीं जानता दूसरे के दिल में क्या है। और हम कितने अपने आप को पावरफुल समझते हैं कि जो मेरे दिल में बात है ना वो किसी को नहीं पता। वो ऐसे कि जैसे मैंने सेफ रखी हुई, एक लॉकर में आप रख देते हैं ना कोई चीज तो सेफ समझते हैं। इस तरह दिल की बातों को हम समझते हैं कि ये मैंने लॉकर में रखी हुई है, ये बिल्कुल सेफ है, किसी को भी नहीं इनका पता। वाकई किसी को नहीं पता, मगर एक जात है जो तुम छुपा लो बात को वो उसको भी जानता है, और जो तुम जाहिर करो वो उसको भी जानता है। उसके लिए बराबर हैं दोनों। मन व मन हुआ मुस्तखफिन बिल्लैल, और जो कोई छुपने वाला है रात को, क्या क्या चीजें छुपती हैं। कोई अपने बिल में जाके छुप जाता है, कोई अपने घर में छुप जाता है, कोई अपने बिस्तर में छुप जाता है। रात अंधेरी हो गई, सब मखलूक अपनी अपने घरों में चली गई और वहां पे जाके बंद हो गई, वो उसको भी जानता है। असारिबुम बिन्नहार, और दिन में हरकत होती है, हरकत रात में नहीं होती, चीजें स्टिल हो जाती हैं ज्यादातर। इसलिए दिन के मामले को कहा गया कि चलने वाला जो दिन में हरकत जो कर रहा है अल्लाह ताला उसको भी जानता है। यानी एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से हया करो जैसे हया करने का हक है। तो लोगों ने पूछा अल्लाह से हया क्या है, यानी फरमाया जो तुम्हारी तुम्हारे सर में है, जो तुम्हारे पेट में और जो तुम्हारे सर में, उसकी हिफाजत करो। यानी जो तुम्हारा सर में क्या होता है, यानी दिमाग है ना, जो तुम सोचते हो, तुम्हारे सोचे हैं, जो तुम्हारी ख्वाहिशात है, जो तुम जो तुम्हारे जहन में आती हैं बातें, जो गुमान, जो वसवसे, जो बातें तुम्हारे जहन में उठती हैं, उनके मामले में अल्लाह से हया करो, इसलिए कि अल्लाह तो जानता है ना, कोई और भी नहीं जानता। आप सोचते हैं कि नहीं कोई जानता, किसी को सामने थोड़ी मैंने ये बात की। उनमें अल्लाह से शर्माओ, और जो खाते हो या शर्मगाह के जितनी भी बातें हैं उनके मामले में भी अल्लाह से शर्म रखो, अल्लाह तो देख रहा है। तो हया सिर्फ बस ऐसे लोगों के सामने शर्मात के दिखाने का नाम नहीं है। हया ये भी है कि जो दिल में सोच रहे हैं ना बातें, उनमें भी शर्म करें। जो लोगों के सामने बयान ही नहीं कर सकते, लोगों के सामने कहते हुए शर्म आती है, उनको फिर दिल में भी ना रखो, क्योंकि दिल पे लोगों की नजर तो नहीं है मगर रब की नजर है। लहू मुआक्किबात मिन बैन यदैही व मिन खल्फिही। अब वो खुद तो निगरानी कर ही रहा है, उसके इल्म में है ही, उसके अलावा उसकी मुआक्किबात है जो सामने से भी और पीछे से भी है। यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, वो हिफाजत करते हैं उसकी अल्लाह के हुक्म से। ये कौन है मुआक्किबात? ये फरिश्ते हैं जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए हैं, और इनके दो तरह के फरिश्ते हैं, जो दो तरह के काम इनके होते हैं। एक है जो यहाँ पे कहा गया हिफाजत करते हैं। हिफाजत में एक इंसान की वैसे भी हिफाजत करनी है, उसकी जिस्म की हिफाजत, उसकी जान की हिफाजत, हिफाजत में उसके आमाल की हिफाजत भी आ जाती है। हदीस में इसके बारे में आता है, एक दूसरे के पीछे आने वाले ये जो मौके बात है इनके बारे में आता है कि इससे मुराद रात और दिन के फरिश्ते हैं। रात के फरिश्ते आते हैं तो दिन के फरिश्ते चले जाते हैं, और दिन के फरिश्ते आते हैं तो रात के फरिश्ते चले जाते हैं। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते तुम्हारे पास आगे पीछे आते हैं, और फजर की नमाज में और असर की नमाज में जमा होते हैं। फिर जिन फरिश्तों ने तुम्हारे पास रात गुजारी थी वो ऊपर चले जाते हैं, तो उनसे उनका रब पूछता है, हालांकि वो उनसे ज्यादा जानने वाला है, कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं, हमने जब उनको छोड़ा तो वो नमाज पढ़ रहे थे, जब हम उनके पास पहुंचे उस वक्त भी वो नमाज पढ़ रहे। ये दिन और रात के फरिश्ते इस तरह से आगे पीछे उनकी ड्यूटियां होती है, फजर और असर के वक्त इनकी ड्यूटियां चेंज होती है। तो वो जब जाते हैं तो जाके उनसे अल्लाह ताला हालांकि जानता है, लेकिन वो उनसे पूछता है कि किस हाल में छोड़ा। दूसरी तफसीर में मैंने जैसे आपको बताया कि वो फरिश्ते जो ये दाएं बाएं जो हम किरामन कातिबीन जिनको कहते हैं, कि वो हमारे आमाल लिखने वाले, ये वो फरिश्ते जिनके बारे में आता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीम, कि सूरह काफ़ में आता है ना, जुबान से इंसान जो कुछ भी कहता है उसके पास एक निगहमान लिखने के लिए तैयार होता है। तो दो फरिश्ते तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे होते। ये इसके अलावा देखिए, अभी इनको दोनों को भी अगर समझ लिया जाए तब भी ठीक है, कि ये जो है ना, जिनको ये लोग भी जो गैर मुस्लिम लोग है ना, ये लोग भी कहते हैं गार्डियन एंजल्स, तो वाकई गार्डियन एंजल्स होते हैं, लेकिन उनकी खुद की कुछ भी नहीं पावर होती, मीन अम्रिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और ये बारियां इनकी लगी हुई है, इनकी शिफ्ट है, फजर के बाद एक की शिफ्ट है और फिर असर के बाद दूसरों की शिफ्ट है। और एक जगह पे आता है कि एक फरिश्ता है जिसने तुम्हारी पेशानी को पकड़ा हुआ है, जब तुम अल्लाह के लिए तवाजो करते हो, आजी करते हो, तो वो तुम्हें सरबुलंद करता है, जब तुम अल्लाह के सामने तकब्बुर करते हो तो वो तुम्हें अलग करते हैं, और दो फरिश्ते तुम्हारे होंठों पे, वो तुम्हारे लिए सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम दुरूद भेजते हो तो हिफाजत करता है, और एक फरिश्ता तुम्हारे मुंह पे मुकर्र है, जो तुम्हारे मुंह में कोई चीज दाखिल ना हो जाए, कोई सांप वगैरह कोई चीज ऐसी दाखिल ना हो जाए, वो उससे हिफाजत करता है। दो फरिश्ते तुम्हारी आंखों पे मुकर्रर हैं, और हर आदमी पर ये 10 फरिश्ते मुकर्रर हैं। रात के फरिश्ते दिन के फरिश्तों पर नाजिल होते हैं, यानी उनके पास आते हैं, क्योंकि रात के फरिश्ते दिन के फरिश्तों के अलावा है। तो हर इंसान के ऊपर, हर इंसान चाहे वो मोमिन है, काफिर है, मुशरिक है, कोई भी है, हर एक के साथ ये फरिश्ते लगे। मुजाहिद बयान करते हैं कि हर बंदे के साथ एक फरिश्ता मुकर्रर है, जो नींद और बेदारी में उसकी जिन्नात इंसानों और ये जो कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्द है उनसे हिफाजत करता है, सिवाय उस चीज के जो अल्लाह के इज़्ज़त से उसको पहुंचनी है ना। इसी वजह से एक आदमी एक कोई जगह थी वहां से हजरत अली के पास आया, तो वो उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे, तो उसने कहा कि आप अपनी हिफाजत कर लें क्योंकि फलां जगह के लोग आपके कत्ल की साजिश कर रहे हैं। अली ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ दो फरिश्ते जो इन मुसीबतों से तुम्हारी हिफाजत करते हैं, जो तुम्हारे लिए मुकद्दर नहीं की गई, और जब तकदीर आ जाती है तो फिर मुसीबतों का रास्ता छोड़ देते, और मौत मजबूत ढाल है, जब तक मौत का वक्त नहीं मुकर्रर तब तक कोई मौत दे नहीं सकता, और अगर कोई तकलीफ मुकद्दर में नहीं है तकदीर में नहीं है तो ये फरिश्ते हिफाजत करते रहेंगे, और जो तकदीर में लिखी हुई है तकलीफ तो फिर ये फरिश्ते एक साइड पे होकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं ना, बार दफा आप देखते हैं कितनी दफा हम ये खबर सुनते हैं, फलाना वो इतनी इमारत से कूद गया और कहते हैं अच्छा देखो बाल बाल बच गया, जिसे अल्लाह रखे हुए कौन सके। कितनी बातें हम करते हैं, वो इसलिए कि वो तकदीर में था कि इसको ये चोट नहीं लगनी, तो वो उन फरिश्तों ने हिफाजत की। और कभी चलते चलते ही कहीं गिर पड़े और इतनी चोट आ गई, इसलिए कि वो तकदीर में थी, वो फरिश्ते फिर साइड पे हो गए। अगर ये तकदीर में ना होती तो वो उन्हें हिफाजत करनी थी, यही उनकी ड्यूटी थी। तो ये भी वो गार्डियन एंजल को पूजने की जरूरत नहीं है, जिसमें भी अल्लाह ही का शुक्र अदा करने की जरूरत है, जिसने हमारी हिफाजत के लिए इतने बॉडीगार्ड मुकर्रर कर दिए, फ्री में हमें मिले हैं सारे ये बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड तो रखने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए तो आप देखते हैं बॉडीगार्ड रख लेते हैं उसके बाद उन्हीं को वो मार वार के चले जाते हैं और उस बंदे को भी मार देते हैं, क्योंकि अब तकदीर में मौत लिखी हुई थी। तो बॉडीगार्ड तो हिफाजत नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए देखो फरिश्ते कैसे हमें सराउंड किए हैं, इन्होंने हमें घेरा हुआ कि सुबह शाम हमारी हिफाजत हो रही है, किसी वक्त भी हिफाजत से छूटते नहीं है। अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को खुद नहीं बदलते। यानी आप ये सोच लें, कोई कौम जब अल्लाह ताला उसको नेमते देता है, अल्लाह नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो अपने औसाफ ना बदले, वो अपने काम ना बदले, अल्लाह ताला फिर उनको वापस जब वो अपने काम बदल लेती है, अल्लाह ताला उनको उनके ऊपर जो भी मसले मसाइल और मुसीबतें भेजता है, फिर अगर वो अपना हाल बदलना चाहती हैं तो फिर उनको खुद पहले कोशिश करनी है, पहले वो उनको अपने हालात के खुद जायजा लेना कि हम गलत कर रहे हैं, तब अल्लाह उनकी हालत बदलेगा। ठीक है, तो दोनों सूरतों में है ये, याद रखें। यानी अल्लाह किसी कौम को नहीं तब्दील करता यहाँ तक कि वो ना अपने आप को, अगर अल्लाह ने नेमत दी हुई है, अल्लाह नेमत नहीं छीनता जब तक तुम अपने आप अपनी डगर नहीं बदलते, तुम अपनी आप को गलत रास्ते पर लेकर जाते तो अल्लाह नेमत छीनता, अल्लाह नहीं जुल्म करता किसी पे। दूसरी बात ये, अगर आप जैसे पस्तियों के अंदर पड़ गए, आपकी कौम नीचे जा रही है, तो अब क्या है, अल्लाह नहीं हालत बदलेगा, ये कह देना वो सिस्टम बदल दे, हुक्मरान दूसरे आ जाए, वोट फलाने को देना दे, अल्लाह नहीं बदलेगा जब तक तुम अपनी हालत नहीं खुद बदल लेते, तुम खुद अल्लाह के दीन पे नहीं आ जाते। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, खुद शऊर होना चाहिए, पहले खुद सीधे रास्ते पर आओ। वइज़ा अराद अल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहू, जब अल्लाह इरादा करता है किसी कौम के साथ बुराई का तो कोई फेरने वाला नहीं, यानी अल्लाह मोहलत देता रहता है, मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ लेता किसी कौम को अजाब में तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, फिर वो चाहे सुपर पावर उसके साथ हो जाए, चाहे कोई उसके साथ हो जाए, फिर कोई फेरने वाला नहीं। अमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, फिर उनके लिए नहीं उसके सिवा कोई मददगार, वाल भी नहीं है, वली वली तो छोड़े, वाल भी नहीं उनको कोई मिलता। वली तो है जो हमेशा ही साथ रहता है ना, मददगार हमेशा, हामी मददगार। वाल जो है वो उस वक्त के लिए जब वो एक मुश्किल के अंदर है, उस वक्त के लिए भी उनको निकालने के लिए कोई नहीं होता। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए यहाँ तक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा, تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من